ओम शांति। बाबा ने आज के मधुर महावाक्य के अंदर हमें निश्चय बुद्धि होने के लिए प्रेरित किया कि कितने भी तूफान आए, कितनी भी बातें आए, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, निर्भय होकर के चलना है, रहना है। और साथ ही साथ प्रतिदिन जब बाबा की मुरली हम सुनते हैं तो ये बात जरूर है कि मुरली के अंदर हमें रोज बाबा मन मनाभव होने के लिए इशारा देते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि अंतिम दृश्य को देखने के लिए बाबा की याद में मजबूत रहना है। और राम की सेना के भी कुछ लोग बच जाएंगे, रावण की सेना के भी कुछ लोग रहेंगे, लेकिन रावण की सेना वाले चिल्लाएंगे तो राम की सेना वाले बाप के मददगार बन जाएंगे। बाबा की याद की मस्ती में मस्त रहेंगे, अर्थात मन मनाभाव की स्थिति उनकी बहुत पावरफुल हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये श्लोक दो बार आता है, मन मनाभाव। नवे अध्याय में भी आता है तो 18वें अध्याय में भी ये बात कही है। और जो मन मनाभव होंगे वही माम एकम, अर्थात एक बाबा की शरण में ही रहेंगे। मन मनाभव को सरल रीति हम सभी जानते हैं, किसका भावार्थ है कि मन बाबा में लगा रहे या मन बाबा में रमा रहे, उसको कहते हैं मन मनाभाव। लेकिन ऐसी मन मनाभाव की स्थिति बनाने के लिए क्या चाहिए, कौन सी चीजों की आवश्यकता हमें अपने अंदर चेक करना है, जिससे पता चले कि हाँ मेरा मन बाबा में है लगा हुआ। क्योंकि अक्सर मनुष्य की यही शिकायत है, कई ब्राह्मण भी आते हैं तो यही बात लेकर के आते हैं, मन लगता नहीं है, मन बहुत विचलित हो जाता है, मन को भटकाने वाली बातें बहुत है, उसमें मन मनाभाव कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मन को शुद्ध स्वच्छ बनाना होगा, निर्मल बनाना होगा, या दूसरे शब्द में मैं कहूं तो मन को मित्र बनाना होगा। आज मनुष्य का मन ही आत्मा का शत्रु होने लगा है। और शत्रु भी क्यों बन गया, क्योंकि मन के अंदर कई प्रकार की व्यर्थ की बातें चलती है, नकारात्मक बातें भी कई बार आ जाती है जो मन को अशुद्ध कर देता है। और जब मन ही अशुद्ध हो गया, शत्रु हो गया, तो वो बाबा में कैसे लगेगा, लगेगा नहीं। बैठेंगे भी बाबा को याद करने के लिए मुश्किल से दो मिनट लगता है, तब तक मन तो बाहर कई बातों में रमा रहता है। इसलिए सबसे पहले मन को मित्र बनाने के लिए मन को स्वच्छ, सकारात्मक, निर्मल, समर्थ, सशक्त करना होगा। ये पांच बातें जरूरी है। मन को स्वच्छ, निर्मल, सकारात्मक, समर्थ और सशक्त बनाना होगा। और उसके लिए, स्वच्छ करने के लिए भी जितना मुरली का अध्ययन होता है उतना मन स्वच्छ होने लगता है। बाबा क्यों हम बच्चों को कई बार कहते हैं, बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, मुरली जरूर पढ़ना है, मुरली जरूर सुनना है, क्यों कहते हैं? क्योंकि मुरली सुनने से, मुरली को आत्मसात करने से धीरे धीरे मन के अंदर की जो कीचड़ पट्टी है वो स्वच्छ होने लगती है, दूर होने लगती है। जिस तरह मान लो कि एक मटका हो और उस मटके के अंदर गंदा पानी भरा हो और मटका फिक्स है, उठा नहीं सकते आप, लेकिन उसको साफ करना है स्वच्छ पानी ताकि उसमें डाल सके, तो क्या करना होगा? कि साफ नलके का पानी खोल दो, धीरे धीरे वो गंदगी ओवरफ्लो होने लगेगी और ओवरफ्लो होने के साथ साथ एक समय आएगा जब सारी गंदगी निकल जाएंगी और वो पूरा मटका साफ पानी से भर जाएगा। ठीक इसी तरह मन के अंदर कई जन्मों की बातें हैं संस्कार रूप में, और इसलिए मन बार बार उस व्यर्थ के चिंतन के आदती बना हुआ है, तो वो गंदगी को जब तक निकालेंगे नहीं तब तक मन अच्छे विचार, सकारात्मक सोचने की क्षमता नहीं रख सकता है। और इसलिए जितना मुरली का अध्ययन, ज्ञान का मनन चिंतन करते जाएंगे, उसका शौक हमें अपने अंदर विकसित करना होगा, और जितना मुरली का मंथन करते रहेंगे, मनन चिंतन करते जाएंगे, कोई न कोई एक विषय ले लो मुरली से ही, कि जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जो बच्चों की स्थिति अचल है, ड्रामा निर्भय, तो मनन करे, एक ही शब्द को लेकर मनन करना शुरू करे, निर्भय कैसे कैसे रह सकते हैं, अचल कैसे कैसे रह सकते हैं, तो उससे क्या होगा, मन को आदत पड़ेगी सोचने की, व्यर्थ चिंतन करने के बजाय समर्थ चिंतन की आदत पड़ेगी। और जब एक ही शब्द को लेकर के आप उन बात पर कई तरह से मनन कर सकेंगे, मंथन करेंगे, लिखो उसको ताकि अपने अंदर दृढ़ रहे वो बातें, और समय आने पर उसको आप प्रयोग में लाओ तो अनुभव होगा, और अनुभव होने से आपको इतनी खुशी होगी कि जो बातें मैंने मंथन किया था आज मैंने उसको यूज किया, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, उससे बहुत खुशी का अनुभव कर सकेंगे, और तब मन इतना समर्थ की ओर प्रेरित होने लगेंगे, लगेगा कि व्यर्थ की बातें कहाँ छूट गई, ये क्योंकि हमारे पास समर्थ चिंतन करने के लिए कोई बातें नहीं है, इसलिए वो व्यर्थ की जो आदत पड़ी हुई है वो बार बार सामने आ जाती है और वो हमें डिस्टर्ब भी करती है, विचलित भी करती है, परेशान भी करती है। हर कोई जानता है ये बात, हर एक के पास ये अनुभव है कि व्यर्थ चिंतन जब चलता है तो कितना मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। अनुभव है या नहीं है? लेकिन जिस तरह से व्यर्थ का मनन चिंतन होता है तो ज्ञान का मनन चिंतन की हैबिट अगर हम डाले या आदत अपने अंदर डाले तो देखो कितना सुंदर। एक ही शब्द ले लो आप, एक शब्द के ऊपर ही आप चिंतन करना शुरू करो, चाहे सार में से लो, चाहे वरदान में से लो, चाहे स्लोगन में से लो, चाहे मुरली से ले लो, आदत डालनी चाहिए तो वो कचरा धीरे धीरे बाहर निकलता जाएगा। जब तक अंदर में वो मंथन नहीं चलेगा मुरली का, उस मुरली को सुन लिया लेकिन आत्मसात जो करना चाहिए उसको नहीं किया, उसको मनन नहीं किया, तो तब तक वो कचरा बाहर निकलेगा नहीं। और इसलिए बाबा कहते हैं कई बच्चे नेमिनाथ बनकर के मुरली सुन लेते हैं लेकिन उस मुरली को अपना खजाना बनाना ये नहीं आता है। इसलिए जब समर्थ विचार नहीं तो सशक्त कैसे होगा, साफ कैसे होगा, स्वच्छ कैसे होगा? तो इसीलिए बाबा ने मन मना भव होने की पहली बात, मन को मित्र बनाओ और मित्र बनाने के लिए उसको अच्छे अच्छे विचार दो, ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करो, मुरली का मंथन करो और मुरली का मंथन करके उसको समर्थ और सशक्त बनाओ। ये पहली विधि है। दूसरी विधि, मन मना भाव होने के लिए मन को देही अभिमानी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना मन बार बार देह अभिमान के वश होगा तो देह अभिमान के वश मन कभी मन मनाभव नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा बार बार आज की मुरली में भी ये बात सार में ही आई, बच्चे देही अभिमानी होकर के रहना है, मन को उन विचारों में ले जाना है जिससे हम आत्मस्थिति में अपने मन को सेट कर सके। बार बार उसको देहाभिमान की आदत पड़ी हुई है, दैहिक विचारों से घिर जाता है लेकिन उसको वहां से बार बार ले आए, देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस में डाले, आत्मस्थिति में रहने की प्रैक्टिस में उसको लगाए। जितना देही अभिमानी होंगे उतना मन मनाभव होना आसान हो जाएगा, नहीं तो देह अभिमान व्यक्ति को कहां से कहां ले जाकर गिराएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए देही अभिमानी होना बहुत आवश्यक है, ये प्रैक्टिस बढ़ानी होगी अपने आप में। तीसरी बात के मन मनाभव होने के लिए जीते जी मरना होगा। किससे मरना होगा? पुराने पन से, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, पुराने संसार, पुरानी बातों से मरना होगा। क्योंकि जब तक मरते नहीं हैं तब तक वो पुराना जागृत हो जाता है जो भूत बनकर के सामने आता है। भूत की बातें है ना, भूतकाल की बात, इसलिए उसको कहा गया। तो भूतकाल की बात तो भूत बन करके ही सामने आएगी जो डराएगी व्यक्ति को, इसलिए जीते जी मरना, माना अपने आप को पुराने पन से एकदम विस्मृत। तो विस्मृत होने के लिए जितना विस्मृत होते जाएंगे तो स्मृति स्वरूप यानी मन मना भव होना आसान होगा। पुरानी दुनिया की आकर्षण बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि आजकल की दुनिया के अंदर आकर्षण की कई चीजें हैं जो मन को स्वतः खींच लेता है, और इसलिए मन भटक जाता है उन आकर्षणों में। मन किन किन बातों में भटकता है? एक तो इच्छाएं क्रिएट होती है, जब पुराने संसार के तरफ आकर्षित हुआ भटका तो इच्छाएं तो जागृत होगी, ये तो स्वतः है, लिंक में है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है कि बच्चे देह सहित देह की दुनिया को ही भूल जाओ, क्योंकि जब तक इस पुरानी दुनिया को पुरानी देह को हम भूलेंगे नहीं तब तक मन वहां से हटेगा नहीं, और इसलिए मन मना भव होना मुश्किल होगा। अर्जुन का मन भी बार बार विचलित हो रहा था। क्यों हो रहा था? जो दो बार उनको कहना पड़ा, एक 9वें अध्याय आधे में और एक 18वें पूरे में, तब जाकर वो नष्टो मोहा बना। तो देह के संसार, देह के संस्कार, पुराने पन के संस्कार, संसार, पुरानी आकर्षण जो है वो अभी भी मन को भटकाने में कामयाब हो जाती है हमारे मन को। और इसलिए मन जब उन बातों में भटक जाता है, कोई चीज की इच्छा हुई ये प्राप्त करे और नहीं मिली, क्योंकि अगर मेरे भाग्य में है ही नहीं, मिली नहीं मुझे, तो कितना मन विचलित होगा। योग में बैठेंगे योग लगेगा। अच्छा, पुराने संस्कार के वश या पुराना स्वभाव के वश कोई बातें हैं जिनको हम छोड़ नहीं पाते हैं, पुरानी बातें, मर्जीवा हो गए, तो वो पुरानी बातों को छोड़ो। लेकिन वो बातें जब तक बुद्धि से छूटती नहीं है, योग लगाना चाहो, बार बार मन कहाँ चला जाएगा? उन्हीं बातों के तरफ चला जाएगा। या ब्राह्मण बनने के बाद भी कोई न कोई मर्यादा की लकीर से हमने कदम बाहर निकाले, और इसलिए वो बातें याद आती रहती है, अफसोस कराती रहती है, पश्चाताप की ओर ले जाती है, तो मन मना भव कैसे रह सकते। इसीलिए जब भी कोई ऐसी बात हो भी गई ब्राह्मण जीवन में, चलो जाने अनजाने पन में पुराने संस्कारों के वश होकर के, तो बाबा ने बहुत सहज विधि हमें बताई है कि लिख करके बाबा को दे दो, बाबा के कमरे में जा करके बाबा को चिट्ठी लिख करके बाबा को दे दो। क्योंकि जब दे देंगे तो आधा माफ करने की बाबा ने गारंटी ली है, आधा माफ है ना। हाँ, पूरा माफ नहीं होगा, लेकिन आधा तो हल्का हो गया, तो जो बोझ है वो आधा तो हल्का हो गया। अब पुरुषार्थ करके आधे के ऊपर ही हमें विजय प्राप्त करनी है, और वो विजय भी कैसे बनेंगे? आधा माफ तो हो गया, चलो बाबा को दे देने से, बाबा को अर्पित कर। कई बार कई लोगों को लगता है लेकिन बाबा को लिख करके दिया, पता नहीं कोई पढ़ेगा। कोई नहीं पढ़ता है, किसी का कचरा कौन पढ़ना चाहेगा, बताओ। हाँ भाई, आपने अपने मन की बात या अपने मन का जो कचरा था वो निकाल करके बाबा के बॉक्स में डाला, दूसरे का कचरा कौन उठाएगा ये मुझे बताओ, किसी के पास टाइम है? हर एक को। और अगर कोई किसी का कचरा उठाता है तो उसको तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे ना, उसको क्या टाइटल दिया जाता है? दुनिया में भी कचरा उठाने वाले को क्या टाइटल दिया जाता है? इसीलिए एक बात निश्चित रखो कि मधुबन में जब बाबा के कमरे में डाल दिया, यहाँ तो किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का, वो सारा जो है बॉयलर में जलाया जाता है, किसी के हाथ नहीं लगता है। इसीलिए ये संकल्प से भी आप मुक्त हो जाओ कि पता नहीं कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, कोई किसी का कचरा नहीं उठाएगा यहाँ पर, इतना याद रखना। क्योंकि वो आपका कचरा जो आपको परेशान कर रहा था तभी तो आपने निकालना चाहा, तो यहाँ कौन होगा जो अपने पास उस कचरे को इकट्ठा करना चाहेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर के सच्चे दिल के साथ, आज जो बाबा ने कहा, सच्चे दिल से बाबा को लिख करके दे दो, स्वाहा कर दो, तो कम से कम अपना मन हल्का तो हो जाएगा, आधा तो हल्का हो जाएगा। और बाकी आधा जो है उसको कैसे खत्म करेंगे जो परेशान कर रहा है? तो उसके लिए श्रेष्ठ कर्म करने की विधि अपनाओ, क्योंकि वो कर्म जो हुआ वो कोई न कोई पुराने ग्रहाचारी ही कहो जो आई और उसके परवश होकर के आपसे वो कर्म हो गया। अब बाबा को आपने सत्य बता करके जो दे दिया तो आधा माफ तो हो गया, बाकी जो आधा है तो उसके लिए श्रेष्ठ कर्म करो। जैसे दुनिया में भी लोग मंदिर में जाकर के कोई न कोई काम करते हैं, भाई कई जूते चप्पल को ठीक करते हैं या सफाई करते हैं देह अभिमान तोड़ने के लिए, और तोड़ने के लिए वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिस श्रेष्ठ कर्म ऐसा हो जिससे दुआएं मिले, और इतनी दुआओं को इकट्ठा करो जो वो दुआएं उसको ऐसा वॉश ऑफ कर देंगी। या जैसे बाबा कहे, कोई भी ग्रहाचारी जब आती है और कोई कर्म हो जाता तो उसको मिटाने के लिए दान दे करके, दे दान तो छूटे ग्रहण, वो पुराने ग्रहण जो लगे तो उसके लिए दान कर दो। कोई ना कोई अपने अंदर सूक्ष्म या स्थूल, स्थूल दान भी हमें मदद करता है, और सूक्ष्म जो दान कर देते उस संस्कार का वो भी हमें बहुत मदद करता है, बहुत हल्का करता है, क्योंकि अनेकों की दुआएं जो प्राप्त हुई वो दुआएं उसको वॉश ऑफ करने में बहुत मदद करेगा। फिर बाबा में जितना हमारा मन लगता जाएगा वैसे वैसे आत्मा शुद्ध होने लगेगी, साफ होने लगेगी। तो इसलिए मन मना भव होने के लिए जीते जी मरना, और जीते जी मरना मना पुराने पन से मरना, और पुराने पन से मरने के लिए पुराने संस्कारों को हर कोई जानता है कि भाई मेरा संस्कार कहाँ मुझे परेशान कर रहा है, तो यहाँ आए हैं बाबा के कमरे में जाकर के उसको दे दो बाबा को, और सदा अपने आप को मुक्त कर लो, प्रतिज्ञा कर लो अपने आप से, दृढ़ संकल्प कर लो कि बाबा आज जो मैंने दे दिया वो दोबारा मुझे लेना नहीं है। और यहाँ समाप्त करके जाना, परीक्षाएं आएगी, उसी संस्कार को वापस जागृत करने के लिए माया चांस तो देखेगी, लेकिन उस वक्त याद रहे कि मैंने बाबा के कमरे में ये दृढ़ संकल्प की चिट्ठी लिख करके दी है, मुझे इसके वश नहीं होना है। ये टेंशन के पहरेदार को मजबूत कर लो, और अटेंशन के पहरेदार जब मजबूत हो जाएंगे तो धीरे धीरे उस कर्म से, उस संस्कार से अपने आप को मुक्त करना सहज हो जाएगा। और अगर मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके चलेंगे, श्रीमत का हाथ पकड़ते हुए चलेंगे, तो मन मना भव होना आसान हो जाएगा। ये तीसरी विधि है। चौथी विधि कि मन मना भव तब हो सकते हैं जब इतना गहरा प्यार हो बाबा के साथ, प्रीत हो। जितनी बाबा के साथ हमारी गहरी प्रीत है, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा वहीं जाता है जहां उसका प्यार होगा। अगर कोई देहधारियों में प्यार होगा तो नेचुरल है कि मन वहां चला जाएगा, स्वतः चला जाएगा। योग में बैठेंगे वो व्यक्ति की याद स्वतः आने लगेगी। ये स्पष्ट करता है कि हाँ, सूक्ष्म में कहीं लगाव है, इसलिए मन वहां गया। या दूसरा कि किसी को हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तब मन बार बार उसके तरफ नफरत के वश होकर के जा रहा है। तो या तो प्यार जहां है वहां जाएगा, या नफरत की भावना है वहां जाएगा, क्योंकि क्षमा नहीं कर पाए। अब बाबा ने जब हम बच्चों को ये बात बहुत सुंदर रीति से कही है कि बच्चे, किसी ने कोई भी ऐसे कार्य किया उसको क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि नहीं तो अंतिम समय वो ही आत्मा हमारे लिए पेपर बन करके सामने आएगी। इसीलिए क्षमा करने से वो आत्मा कभी भी मेरे लिए परीक्षा बन करके नहीं आएगी। अगर वही अंतिम घड़ी हो और वही व्यक्ति सामने आ गया, तो उस वक्त बाबा की याद होगी या उस आत्मा के प्रति जो भावना, जो कड़वाहट जागृत होगी, वो मेरी स्थिति को कहां पहुंचाएगी। तो अंतिम समय तो मन मनाभाव नहीं हो सकते है ना, इसीलिए क्षमा कर दो तो वो आत्मा मेरे लिए परीक्षा बन करके न आए। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं कि जब आप मन से किसी को क्षमा करके देख लो कितना हल्के हो जाते हैं। दिल से क्षमा करके देख लो, और वो भी विशेष अमृत वेले बाबा के सामने उस आत्मा को इमर्ज करके उसको क्षमा करो। बाबा साक्षी है, जब मैंने क्षमा किया है और उसके बाद मेरे अंदर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रहेगी, तब समझना कि हाँ, मैंने सचमुच क्षमा किया। अगर वो आत्मा मेरे सामने आ भी जाए तो उसके बाद भी मेरे अंदर कोई भी प्रकार का नकारात्मक भाव उत्पन्न न हो, तब समझना हाँ, क्षमा कर दिया। और फिर वो कभी वो आत्मा मेरे लिए परीक्षा बन करके सामने नहीं आएगी, गारंटी है ये। इसीलिए या तो जहां बहुत प्यार है या नफरत है, वो दो आत्माएं हमेशा बार बार मेरे मन के द्वार खटखटाती रहती है, मन मना भव होने नहीं देती। इसीलिए मन मना भव होने के लिए पहली बात, सर्व संबंध मेरे बाबा के साथ हो। जितना मेरे सर्व संबंध, गहरी प्रीत मेरी बाबा से होगी, हर संबंध मैंने बाबा के साथ इतने गहरे रूप से जोड़ा होगा, फिर देखो बाबा की याद स्वतः आने लगेगी। क्योंकि जहां प्यार होगा वहां मनुष्य का मन जाएगा। इतना बाबा से प्यार हो जो बाबा के सिवाय और कोई मुझे याद ही ना आए, और नफरत की भावना को भी अब समय है निकाल दो, इसके बाद शायद समय नहीं मिलेगा क्षमा करने का। क्योंकि वो अंदर में एक ऐसी गांठ बना देगा जिस गांठ को खोलने का भी समय नहीं होगा। इसीलिए क्षमा कर दो, अमृत वेले बाबा के सन्मुख उस आत्मा को भी इमर्ज करके दिल से बाबा के सामने कहो, बाबा आज से मैंने इस आत्मा को क्षमा कर दिया, उसने जो किया उसके लिए अब मेरे दिल के अंदर उसके प्रति कोई भाव नकारात्मक नहीं है या व्यर्थ की भावना भी नहीं है। फिर देखो आप कितना हल्का हो जाएंगे अंदर से, और तब मन मना भाव होना आसान हो जाएगा, नहीं तो मन मना भाव नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा बाबा से गहरा प्यार। अच्छा, बाबा से मेरा गहरा प्यार है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कि सभी आत्माओं के साथ भी मेरी प्रीत की रीत निभाने की विधि बहुत सुंदर होगी। बाबा के साथ प्यार है मेरा तो बाकी सब आत्माएं समान है, और समान है तो सबके साथ एक रूहानी प्रीत की रीत निभाने की विधि मुझे आती है। ये नहीं कि इसके साथ बहुत ज्यादा, इसके साथ कम, ऐसा कभी नहीं होगा। सबके साथ समान भाव मेरा रहेगा तब समझना कि हाँ बाबा के साथ भी मेरी गहरी प्रीत है। सबके साथ समान व्यवहार, समान भाव, कोई भी मेरे लिए पराया भी नहीं तो कोई भी मेरे लिए बहुत अपना भी नहीं है। तब समझना हाँ बाबा के साथ गहरी प्रीत है। सबके साथ समानता का व्यवहार या सबके साथ रहते हुए प्रीत की रीत निभाने की विधि मुझे बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि तभी वो आत्माएं भी, किनारा नहीं करना है, बाबा ने ये साफ मना किया है, किनारा कहीं नहीं करना है, रहना भी वही है, और रहते हुए न्यारे होकर के रहना ये बाबा ने हमें सिखाया है। जैसे ब्रह्मा बाबा रहा भी सबके बीच में, लेकिन बीच में रहते हुए, अपनों के बीच में रहते हुए, सबका बाबा से इतना प्यार होने के बावजूद बाबा न्यारा और प्यारा रहा। बाबा का, शिव बाबा का प्यारा बाकी सबसे न्यारा रहा तो क्या हो गया। अंतिम समय बाबा का बुद्धि योग खींचने के लिए कोई भी निमित्त नहीं बना, न्यारा और प्यारा। और सारे ब्राह्मणों ने बाबा को संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि इन सब आत्माओं से भी मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, तो किनारा नहीं करना है, रहना भी उधर ही है, सबके साथ प्रीत की रीत निभाते हुए वो विधि आनी चाहिए ताकि मैं उनको संतुष्ट भी करूं और वो मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी दे। क्योंकि जब सबका संतुष्टता का सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा तब बाबा भी मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट पास विद ऑनर ये डिग्री दे सकेगा, नहीं तो नहीं देगा। ये नहीं कि मेरा बाबा से बहुत प्यार है इसलिए क्या करूं, दुनिया वालों से मेरे को अभी कोई मतलब नहीं, उनसे कोई इंटरेस्ट, ये भी नहीं। बाबा ने कोई ऐसे सूखे सन्यासी थोड़ी बनाया है हमको। बाबा ने हमको कहा है रहना भी सबके बीच में, लेकिन कमल की तरह ही रहना है, और रह करके उन सबको ऐसे शुभ भावना का वाइब्रेशन देते हुए उनको परिवर्तन करे ताकि अंत में वही मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी दे देवे। तो इसीलिए बाबा के साथ सर्व संबंधों का प्यार इतना गहरा, लेकिन दुनिया के सामने रहते हुए, उनके बीच में रहते हुए न्यारे हो करके चलना, प्रीत की रीत निभाने की विधि मुझे इतनी सुंदर आती है जो सबको संतुष्ट करते हुए, क्योंकि तब वो मुझे सर्टिफिकेट देंगे और तब बाबा भी मुझे सर्टिफिकेट। अगर सबका सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बाबा का भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, समझा। तो इसीलिए मन मना भाव होने के लिए सबके साथ भी मेरी प्रीत हो, लेकिन न्यारा और प्यारा रहने वाली प्रीत हो। पांचवी बात, चार बात हो गई, पांचवी बात کہ من منا بھاؤ جب ہوں گے تب ماں میں کم شرنم رج، یعنی بابا کی شرن میں اس طرح سے ہوں گے کہ جیسے ہر پل بابا کی چھتر چھایا سویم پر محسوس ہونے لگے گی، اور ایسے لگے گا جیسے بابا کی چھتر چھایا میں میں سمائی ہوئی ہوں، اور اس کارن سے ایک بہت سندر انوبھو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یوگ میں بیٹھو تو سہجتا سے بابا کے ساتھ میں بابا کی شرن کا انوبھو کرتے ہوئے جیسے بابا کی یاد میں سمانے کا انوبھو ہوگا، اسی کا نام ہے من منا بھاؤ۔ لیکن یہ شرن کا انوبھو کرنے کے لیے ضرور رہنا ان دنیا والوں کے بیچ میں ہے، لیکن زیادہ تر انترمکھی استھتی میں۔ جتنا سائلنس کی استھتی کا انترمکھتا کا انوبھو کریں گے اتنا بابا کی شرن میں سہج رہ سکیں گے۔ اگر انترمکھتا کا ابھیاس نہیں ہے تو ضرور ہے باہر کے دنیا کے لوگ مجھے بہت جلدی اپنی باتوں میں آکرشت کر لیں گے، اور جیسے ان کی باتوں میں چلے گئے تو کچھ ویرتھ چنتن، پر چنتن، کچھ بھی چنتن ہوتا رہے گا تو وہ مجھے بابا کی شرن سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو اسی لیے بابا کی شرن میں رہنے کا انوبھو ہر وقت کرتے جانا ہے۔ تو یہ ہے من منا بھاؤ، کیونکہ من منا بھاؤ ہوں گے تو ماں میں کم سہج ہو، ایک دوسرا نہ کوئی، یہ سہجتا سے بدھی کے اندر ہو کی بات۔ اور بات چھٹی بات کہ من منا بھاؤ ویکتی کے سامنے، جب من منا بھاؤ ستھی میں رہنے لگیں گے تو مایا کوئی جلدی چھوڑنے والی تھوڑی ہے، تو پریکشائیں تو آئے گی، پیپر تو آئیں گے، لیکن پیپر پریکشا آنے کے بعد بھی جیسے آج بابا نے کہا نربھے ستھتی ہماری ہو، ڈرنے والے نہیں، اور نہ ڈرنے والے ہیں اس کا پرمان کیا؟ نشچے بدھی، نشچے بدھی ہو کر کے چلنا، کہ یہ بھی سائیڈ سین ہے جو میری اوستھا کی پریکشا لینے آئے ہیں، لیکن مجھے سہجتا سے بابا کی یاد میں اپنے آپ کو لے چلنا ہے۔ ہائی کیا ہوا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جنگل میں نہیں جانا۔ اس لیے بابا ہمیشہ ویکت مرلی میں کہتے ہائی وے پر رہنا ہے، گلیوں میں نہیں جانا ہے، جنگل میں نہیں جانا ہے۔ گلیاں اور جنگل کون سے ہیں؟ تو کیوں، کیا کوشچن اٹھے، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ کیوں، کیا، کیسے کے کوشچنز جیسے اٹھے تو یہ گلیاں ہیں، اور ان گلیوں میں جو گیا وہ بھٹک جائے گا راہ سے۔ جنگلوں میں چلا گیا، اور جنگلوں میں جانے کے بعد تو ضرور ہے من پریشان ہو ہی جائے گا۔ اس لیے بابا کہے نشچے بدھی ہو کر کے جو چلتا ہے وہ ہائی وے پر رہتا ہے، وہ ہر بات میں بندو لگانا جانتا ہے، بندو لگا دو، جو ہوا اس میں بھی کلیان۔ جیسے آج بابا نے کہا کہ کوئی بھی ایسی بات ہو تو اس کے اندر سے کیا نکلے گا، ڈراما کلیانکاری ہے، ڈراما کلیانکاری ہے، بابا کلیانکاری ہے۔ جب بابا کلیانکاری، ڈراما کلیانکاری، تو میرا کلیان کرنے کی شکتی کس میں ہے؟ کچھ بھی ہوا تو پہلا کیا یاد آتا ہے؟ ڈراما کلیانکاری، کیوں ہوا، کیسے ہوا، نہیں ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہوا۔ یہ سارے جنگل میں مجھے گھسنا نہیں ہے، کیونکہ جو ایک بار ان جنگلوں میں چلا گیا پھر وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ ایسے بھول بھلیا میں چلا جائے گا، ایک سے دس پرشن، دس پرشن سے بیس پرشن ہو جائیں گے، اور پھر من اتنا پریشان ہو جائے گا، وچلت ہو جائے گا، جو من منا بھاؤ کی استھتی نہیں رہے گی۔ इसलिए ये भी हम प्रिपेयर्ड रहे कि परीक्षाएं तो आएगी, लेकिन ये परीक्षाएं आती ही है मेरी अवस्था को मजबूत बनाने के लिए, और मजबूत बनाने के लिए मुझे ये निश्चय होना चाहिए ड्रामा कल्याणकारी है, हर वक्त ड्रामा कल्याणकारी, और इस परीक्षा को भी मुझे पास करना है। इसीलिए कई बार कई लोग जब कहते हैं पुराने हिसाब किताब, मैं कहती हूँ हिसाब किताब नहीं है, ब्राह्मण जिस दिन से बने, हमारे पुराने हिसाब किताब समाप्त हुए तब हम ब्राह्मण बने, क्योंकि ये पहला जन्म। जिसके पुराने हिसाब किताब होंगे तो ब्राह्मण बनने के बाद भी माया उसको खींच के ले जाएगी, बाकी जिसके पुराने हिसाब किताब सब समाप्त हुए तब ब्राह्मण बने। बाकी जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा, हमारे सामने ये परीक्षा पेपर है, और पेपर आता है ये पास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और जब उसको पेपर समझ करके पास करते आगे बढ़ जाते हैं, तब देखो आप कितने हल्के रहेंगे और आपको खुशी होगी पास होने की, और आप अपनी क्षमता को भी समझ सकेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये शक्ति ये क्षमता है, और ये शक्ति और क्षमता बाबा ने जिस तरह से विकसित किया, हमेशा हर बात में बाबा जरूर आए साथ में, ये भी अभिमान ना आए कि हाँ मेरी शक्ति से मैंने पार किया, बाबा ने उस शक्ति को भरा है। बाबा को जब ले आते तो मैंपन समाप्त हो जाता, तो आगे बढ़ना सहज हो जाता, नहीं तो जैसे ही मैंपन आए तो वहां से नीचे गिरे, फेल हो गए, वो पास हो ही नहीं सकता है। मैंपन वाला कभी पास हो सकता है? वो कभी पास हो ही नहीं सकता है। इसीलिए परीक्षा आई, पास हुए, पास होने के बाद भी जब कोई कहे आप पास कर दिया, बहुत अच्छा किया, बाबा याद रहे, हाँ मैंने पास किया, ये भाव अगर आए तो गिरे वापस, ये भी फेल हो गए, तो इसीलिए पास होने के बाद भी फेल हो जाना, इसी का नाम है कि पास होकर के भी फेल हो गए, गिर गए। भावार्थ ये कि जब पास कर दिया तो उसके बाद भी यही श्रेय सारा बाबा को जाता है, क्योंकि बिना बाबा के इस परीक्षा को पार करना मुश्किल होता, इसलिए जैसे ही बाबा को समर्पित कर देते हैं कि बाबा ये पास भी किया तो भी, जैसे ही किसी ने कहा कि बहुत अच्छा किया आप तो बड़े बहादुर निकले, इतनी बड़ी परीक्षा पास कर दिया, कहो बाबा, तुरंत बाबा याद आए, जहां बाबा है तो कोई मुझे हिला नहीं सकता है, माया की कोई परीक्षा पास करने के बाद भी मुझे फेल नहीं कर सकती। इसलिए सहजता से करण करावन हार बाबा करा रहा है, ये बात स्मृति में रहने से कभी भी हम कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही ये बातें आएगी, परीक्षाएं आएगी, पेपर आएंगे, लेकिन उसको पेपर समझ करके मुझे पास विथ ऑनर होना है, पास हो जाएंगे, और फिर देखो कितना अच्छा लगेगा, बाबा के संग जैसे उड़ते जाएंगे, बैठे महसूस करेंगे। कितनी बातें हो गई मनमना भव होने के लिए, छह बात हुई, सातवीं बात है कि मनमना भव होने के लिए श्रेष्ठ स्वमानधारी होना आवश्यक है। जितना अपने मन को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करेंगे, और खाली संकल्प से नहीं स्थित करना है, लेकिन फील करना है, मन उस भाव को फील करे। कहने में मैं कह देती हूँ कि हाँ मैं सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर एक कॉकरोच आए तो भी मैं डर जाऊँ, उछल कूद करने लग जाऊँ, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान तो नहीं, मना मैंने वो स्वमान तो लिया, लेकिन वो परीक्षा आई, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के सामने परीक्षा तो आएगी ना कि भाई आज उसने ये स्वमान लिया, माया ने भी सुन लिया कि उसने सुबह सुबह ये स्वमान लिया है, तो चलो मैं देखती हूँ। तो कॉकरोच बन करके माया आती है, और जैसे ही माया आई और मैं उस कॉकरोच के सामने उछल कूद करूं, तो माया भी मेरे पर हंसेगी या नहीं हंसेगी? माया भी हंसेगी, ये मास्टर सर्वशक्तिमान है, कहेगी कि नहीं कहेगी? तो इसीलिए जो स्वमान लेते हैं, उस स्वमान का स्वरूप बन करके उसको फील करो, उस शक्ति को फील करो। और फिर जैसे माया परीक्षा लेकर आए, तो समझ जाओ कि आज मैंने ये स्वमान लिया तो ये आएंगी। तो निर्भय हो करके, शक्तिशाली बन करके उसको बिना विचलित हुए पार कर दो, या हटा दो, या उसको खत्म करो। लेकिन ये नहीं कि मैं उछल कूद करने लग जाऊं, नहीं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान कहां से हुई? तो इसीलिए जो स्वमान हम लेते हैं, वो स्वमान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनना, और स्वरूप बन करके उसको फील करना, उस ऊर्जा को महसूस करना अपने अंदर। और जैसे उसको महसूस करते हैं, तो बाबा के साथ साथ मैं हूँ ये फील करने से कभी भी कोई भी बात मुझे हिला नहीं सकेगी, और मेरे मन को विचलित नहीं कर सकेगी। तब हम सहजता से मन मना भाव की स्थिति में रह सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, मन मना भाव होने के लिए सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी बन करके, क्योंकि बाबा के साथ मुझे अपना मन लगाना है, तो समानता तो चाहिए या नहीं चाहिए? बाबा ने जैसे हम बच्चों को कहा कि बच्चे, दुनिया में लोग भक्त समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, सेवादार समझते हैं, या अपने आप को बहुत नीचे कक्षा पर समझते हैं, तो इसीलिए भगवान के साथ उनका मन जुड़ ही नहीं सका। लेकिन हमारा मन क्यों बाबा के साथ जुड़ा? क्योंकि बाबा के साथ हम उस समानता की स्थिति में आते हैं, जैसे बाप वैसे हम बच्चे हैं, तो सहजता से मन हमारा जुड़ सकेगा। तो ये स्वमान के आधार पर हम उस समानता की स्थिति पर आते हैं, और तब हमारा मन बाबा में इस तरह से जुड़ जाएगा, सहजता से जुड़ जाएगा, जो मन मना भव होना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने स्वमान लिया ही नहीं, मैं बाबा के सामने अपने आप को अभी भी नीच पापी कपटी ये समझती रहूं, तो कैसे बाबा में मन मना भव हो सकेगा? मेरा मन लग ही नहीं सकता है, रमी नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत नीचे देखा। तो इसीलिए अपने स्मृति से स्वमान के सीट धारी हम बने। रोज बाबा ने हम बच्चों को कहा, जो स्वमान में अपने आप को उस सीट पर सेट कर देते हैं, तो सीट पर सेट होने से बाबा के साथ का अनुभव करना कितना सहज और सुंदर होगा। तो इसीलिए मन मना भाव होने के लिए श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ, और इसीलिए उस सीट पर से हिलाने के लिए, आज जैसे बाबा ने कहा अंगद का मिसाल दे करके कि हिलाने के लिए आए तो भी क्या किया, हिला नहीं हिला, रावण के उसमें जाकर के पैर जमा दिया कि हिलाएं तो सीता जी आपकी, सारे घबरा गए, भई ये क्या बोल रहे हैं, सीता जी को देने की बात कह दिए, जमा तो दिया, तो रावण हंसने लगा, अरे तो मेरे महारथी हिला देंगे इनको तो। लेकिन जब जमा दिया विश्वास पर, उसके विश्वास पर जब जमा दिया पैर को, तो कोई महारथी हिलाने की ताकत नहीं रख सका, है ना? और इसीलिए जब बाकी बंदर सेना ने पूछा कि भाई तुमने ऐसा कैसे पैर रख दिए, और अगर हिला देते थे तो उसने क्या कहा, पैर रखना मेरा काम था, हिलना न हिलना ये उसका काम है। ये विश्वास, ये निश्चय, ऐसी निश्चय बुद्धि बनना, ऐसे निश्चय बुद्धि होकर के चलना। देखो फिर बाबा भी ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को किस तरह से मददगार बन करके सामने खड़ा हो जाते हैं। लेकिन अगर मेरा बुद्धि रूपी पैर हिलता रहा बार बार, मैंने रख तो दिया, पता नहीं बाबा आएगा कि नहीं आएगा, बाबा आएगा, बाबा कहाँ से आएगा बताओ, है ना। और इसीलिए रावण भी आ जाए लास्ट में, रावण भी आ गया उसका पैर हिलाने के लिए, तो क्या किया, अरे पैर पड़ना है तो श्री राम के पैर पड़ो, मेरे पैर पड़ के क्या, लात मार के चला गया, लात मार के चला गया। इसलिए बाबा कहे रावण भी हिला न सके, इतना बुद्धि रूपी पैर हमारा, निश्चय का पैर इतना मजबूत हो कि कोई भी हिलाने का प्रयत्न करे तो भी वो हिला न सके, वो भी हिला न सके हमारे बुद्धि रूपी पैर को। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, रावण तो क्या, रावण का बाप भी अगर आ जाए ना वो भी नहीं हिला सके। रावण का बाप कौन है, रावण का बाप कौन है, शिव बाबा। रावण किसका भक्त था, शिव का भक्त था ना, तो रावण का बाप कौन है, शिव बाबा है। तो इसीलिए रावण तो क्या, रावण का बाप भी आ जाए तो भी वो हिला न सके हमें, इतना निश्चय बुद्धि, इतना श्रेष्ठ स्वमानधारी बन करके हम चले रहे, जो कोई भी बाबा स्वयं भी दुनिया में, इसीलिए कई कथाओं में दिखाया गया है कि भगवान भी रूप बदल करके आता है, साधारण रूप में आता है हिलाने के लिए, देखे उसके निश्चय की पैर हिलते हैं या नहीं हिलते, भगवान भी हिलाने के लिए दिखाते हैं ना कई कथाओं में। तो इसीलिए बाबा भी अगर आ जाए हिलाने के लिए कि देखे इसका निश्चय का पैर हिलता है कि नहीं हिलता है, तो भी हिलने वाले हम हैं, हम हिलने वाले हैं बिल्कुल नहीं। इसीलिए बाबा हमारे साथ है, ये निश्चय ड्रामा कल्याणकारी है, ये निश्चय परिवार हमारे साथ है। स्वयं में दृढ़ता हो, ऐसी शक्ति हो कि हमें बाबा ने इतना ऊंच बनाया है, इतना श्रेष्ठ स्वमानधारी बनाया, तो उस स्वमान से हिलने वाले नहीं है। तो ये चारों स्वमान और चारों निश्चय इतने पक्के हो अपने अंदर, जो कोई भी बात हमारे मन को विचलित न कर सके, लेकिन सहज मन मना भाव स्थिति में रह सके, तभी बाबा कहे ऐसे हिम्मतवान मजबूत बच्चे जो होंगे, वही अंतिम दृश्य को देखने के पात्र होंगे। और ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए जो मजबूत, जो बाबा ने आज मिसाल दिया, कोई ऑपरेशन देखने जाते और वही बेहोश हो जाते, देख ही नहीं सकते हैं, है ना। इतने कमजोर दिल वाले थोड़ी चाहिए भगवान को, तो मजबूत दिल वाले चाहिए कि अंतिम जो भी दृश्य आएंगे, उन दृश्य को देखते हुए, उन दृश्य को क्या सहजता से पार करके दूसरे के भी मददगार उस समय बन जाए, ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए जो अंतिम दृश्य को सहजता से पार करके नई दुनिया की स्थापना में फिर भी अपना रोल इस तरह से निभाएं, ऐसा रोल प्ले करे जो सब लोग कहे हाँ सचमुच ये भगवान के बच्चे हो सकते हैं, यही भगवान के बच्चे हैं, यही भगवान, यही है, यही है, यही है, ये सब निकले अंदर, ठीक है। तो ये है मन मना भाव होने से कितने मजबूत, परिपक्व और शक्तिशाली हम बन जाएं, और अंतिम समय वही दृश्य देखते हुए भी मन बाबा के साथ जुड़ा रहे, ये है मन मना भाव स्थिति, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
कब छाओ बन कर लहरों में कभी नाव बन कर धूप में कभी छाओ बन कर लहरों में कभी नाव बन कर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ मेरे बाबा है साथ 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 जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा हर लम्हा दीप बन के जले कांटों पे भी मेरे संग संग चले अब तो लगता है जन्नत बनी हयात मेरे बाबा है साथ 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 मेरे बाबा